पृष्ठ संख्या 92। लंबी कथात्मक कविताएं। अनिमेष राम विश्वजिद दिव्य शरभंग भाव, विद्धांग बद्ध को दंड मुष्टि खर रुधिर स्राव। अस्थल धन गुण है कटिबंध स्रष्ट तुड़ीन धारण, दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त प्रतिलट से खुल। फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर वक्ष पर विपुल, उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नशा अंधकार। मैंने अपने इस निबंध का शीर्षक लंबी कथात्मक कविताएं दिया है। पहले मैंने सोचा था प्रबंध क्षमता शीर्षक ठीक रहेगा, फिर प्रबंध का स्थापत्य और फिर कथा काव्य। लेकिन जैसे जैसे इस लंबी कविताओं के भीतर मैं धंसता गया, उनके अर्थ संधान की प्रक्रिया में डूबते हुए मुझे लगा कि निराला की इन कविताओं के लिए प्रबंध क्षमता या प्रबंध का स्थापत्य जैसे शीर्षक ठीक नहीं रहेंगे, क्योंकि इन शब्दों का एक निश्चित पारिभाषिक अर्थ है और इस तरह के शीर्षकों के अंतर्गत निराला की इन लंबी कविताओं को फिट इन नहीं किया जा सकता, क्योंकि निराला की ये कविताएं उस परंपरागत अर्थ में प्रबंध के स्थापत्य का नमूना नहीं, ना ही उनकी प्रबंध क्षमता को कालिदास, तुलसीदास, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त या प्रसाद की प्रबंध क्षमता की तरह इन कविताओं के आधार पर व्याख्यायित, परिभाषित, विश्लेषित किया जा सकता है। फिर ये सिर्फ कथा काव्य भी नहीं है, क्योंकि इनकी इतिवृत्तता समूची कहीं भी सुरक्षित नहीं है। किसी न किसी तरह का प्रक्षेप इन सारी कविताओं में हर जगह विद्यमान है, चाहे वह कवि के व्यक्तित्व का प्रक्षेप हो, उसके निजी आत्म साक्षात्कार का, संघर्षों का, अथवा भाषा की लयपूर्ण बिंबात्मकता का। ये सारे प्रक्षेप निराला की इन लंबी कविताओं को परंपरा विहित प्रबंधात्मकता से अलग करते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र में कथा काव्य के लिए अनुशासनबद्ध विधान काफी कड़े हैं। उसमें लंबी शब्द कहीं नहीं प्रयुक्त हुआ है। उन्होंने इसे प्रबंध काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य इत्यादि शीर्षकों में विभाजित किया है और इस तरह की रचनाओं का एक निश्चित मापदंड है। इससे इतर काव्य को उन्होंने मुक्तक की संज्ञा दी है। दरअसल मैथिली शरण गुप्त के बाद कविता के नियामक पृष्ठ संख्या 93 अनुशासन सबसे पहले समाप्त हुए। आज की कविता उन पुराने निश्चित अर्थों में मुक्तक रचना का उदाहरण नहीं है। इसी तरह आज की या निराला की भी लंबी कविताएं भी उन निश्चित अर्थों में प्रबंध काव्य के उदाहरण स्वरूप उदाहरित नहीं की जा सकती। इसीलिए उनमें उस तरह की अनुशासनबद्ध परिभाषिकता का अभाव है। दरअसल ये कविताएं गद्य के वृत्तांत और कविता के भावोद्वेग को समेटने और समन्वित करने के प्रयास से जन्मी हैं। तुलसीदास या कालिदास या माघ के समय में गद्य कविता के लिए चुनौती नहीं थी, बल्कि कविता अपने इतिवृत्त कथन से ही प्रबंध की परिभाषा से जुड़ती थी। जब इतिवृत्त की जगह गद्य ने ले ली, तो कविता के लिए प्रबंधात्मकता एक प्रकार से चुनौती बन गई। हिंदी में गद्य की इस चुनौती का पहला एहसास प्रेमचंद की रचनाओं ने कराया और कविता से एक तरह से प्रबंध का इतिवृत्त के महत्व को उसने खींच लिया। इसका एहसास मैथिली शरण गुप्त या हरिओद के समय तक नहीं हो पाया था, क्योंकि गद्य के सामर्थ्य और उसके क्षेत्र विस्तार की स्थिति इन कवियों के सामने स्पष्ट नहीं थी। इसीलिए हरिओद को प्रिय प्रवास या मैथिली शरण गुप्त को साकेत लिखने में रचनात्मक स्तर पर किसी डेंजर फायर का एहसास नहीं हुआ। लेकिन प्रसाद के लिए यह सबसे बड़ी समस्या सिद्ध हुई, क्योंकि प्रसाद तक आते आते हिंदी गद्य के क्षेत्र विस्तार और उसके फैलते सीमांतों का एहसास सारे नए कवियों के सामने स्पष्ट हो गया था। इतिवृत्त और विवरण प्रधानता गद्य का स्वभाव है। अपने इसी गुण के कारण दुनिया की सारी भाषाओं के इतिहास की सीमा में पहली घुसपैठ गद्य ने ही की है। इस घुसपैठ का स्वाभाविक परिणाम यह होता है, और हिंदी में भी यही हुआ, कि कविता का क्षेत्र विस्तार संकुचित हो गया और इतिवृत्ति और विवरणात्मकता ब्रैकेट में जो प्रबंध रचनाओं की पहली शर्त थी, को गद्य ने आकर कविता के क्षेत्र से बहिष्कृत कर दिया, या अगर बहिष्कृत नहीं भी किया तो कवि के सामने प्रबंध रचना को लेकर एक नई चुनौती तो मैदान में फेंक ही दी। हिंदी में प्रबंध रचना की दृष्टि से इस चुनौती का अभी तक सबसे सफल परिणाम कामायनी की रचना है। इतिवृत्त के बहिष्कृत हो जाने से गद्य ने एक प्रकार से प्रबंध रचना की बुनियाद पर ही आघात किया, और इतिवृत्त में कविता की उस बुनियाद के बिना कोई भी प्रबंध रचना असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन तो हो ही गई। यह जैसे 2000 वर्षों के बाद कविता के पुराने प्रबंध स्थापत्य के ढह जाने या उसके पुनर्निर्माण के व्यर्थ सिद्ध हो जाने पर प्रबंध रचना के सर्वथा एक नए स्थापत्य की तलाश थी। बिना बुनियाद, बिना किसी पुराने नक्शे, रेखांकन या झलक के यह नई तलाश कितनी श्रम साध्य, कठिन और संशय ग्रस्त रही होगी, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। इसीलिए कामायनी प्रबंध रचना के स्थापत्य के तलाश की पृष्ठ संख्या 94 एक सर्वथा नई खोज है। कुछ कुछ उसी ढंग की खोज जो एजरा पाउंड के कैंटोज में अभिव्यक्त हुई है। प्रसाद की कामायनी में तो फिर भी इतिवृत्ति अपना वेश बदलकर घुसपैठ करता हुआ दिखाई देता है, और उन्हें लगता है कि इतिवृत्ति से उन्हें एकदम से निजात नहीं मिल सकती। इसीलिए उसमें एक आदिम कथा का आधार भी लिया गया है। प्रसाद हिंदी कविता के जिस युग में पैदा हुए उसके पहले इतिवृत्ति पर संशय का कोई चिन्ह भी नहीं लगाया गया था। हरिओद और मैथिलीशरण गुप्त ने तो सदियों बाद उस इतिवृत्ति का ही आधार लेकर बड़ी ख्याति अर्जित की, लेकिन प्रेमचंद के आविर्भाव ने सहसा गद्य को इतनी तेज गति दे दी कि 20-25 वर्षों के अंतराल के बाद ही प्रसाद को इस चुनौती का सामना करना पड़ा। फिर भी बावजूद इसके प्रसाद के मन में इतिवृत्ति के अनिवार्य त्याग पर एक संशयग्रस्तता की स्थिति तो है ही। यह जो कथा को आगे बढ़ाने का क्रम कामायनी में परिलक्षित होता है वह उस इतिवृत्ति की परंपरागत अनुगूंज ही है। यह अनुगूंज इसलिए अनिवार्य तत्व की तरह कामायनी के संपूर्ण रचना कलेवर से चिपटी शेष रह गई है, क्योंकि प्रसाद गद्य द्वारा फेंकी गई इस चुनौती को झेलने वाले गद्य का आविर्भाव प्रसाद के लिए अभी कल की बात थी, लेकिन एजरा पाउंड का आविर्भाव अंग्रेजी अमेरिकन कविता के उस युग में हुआ जब गद्य को विकसित हुए सदियों गुजर चुके थे। पाउंड स्वयं बिंबवाद के जन्मदाता हैं, उनमें और पश्चिम की प्रबंध कविता में दूरी बहुत लंबी थी। इलियट, ओडेसी, डिवाइन, कॉमेडी, इन्फर्नो और पैराडाइज लास्ट से पाउंड की दूरी जितनी अधिक थी उनके लिए प्रबंध रचना की चुनौती उतनी ही गहरी और कठिन होती गई, क्योंकि गद्य इतिवृत्ति को वहाँ सदियों से संपूर्णतः निगलता चला आ रहा था। उसका कुछ उपयोग प्रामेथियस अनबाउंड या कुबला खां के कवियों के लिए तो संभव था, लेकिन पाउंड के लिए उसकी अनगूंज को भी किसी प्रबंध रचना में समाहित कर सकना संभव नहीं था। यहाँ प्रबंध रचना से मेरा मतलब पाउंड के कैटोज से ही है, उनकी अन्य लंबी कविताओं से नहीं। पाउंड जिनकी काव्य दृष्टि और काव्य इतिहास की समझ अत्यंत गहरी है, अपनी रचनाओं में किसी भी पारंपरिक अनुगूंज को शायद बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। यह उनकी दृष्टि में या किसी की भी दृष्टि में कवि की रचनात्मक तेजस्विता का एक प्रकार से स्खलन साबित होता है। दूसरी ओर पश्चिम के हर महान कवि की तरह पाउंड की चुनौती भी दांते, होमर, वर्जिल या मिल्टन ही है। उनकी इसी चुनौती, आकांक्षा और भटकन का परिणाम कैंटोज की कविताएं हैं। वे अपने कैंटोज में जिस दुरूहता और अर्थ संश्लिष्टता से लेकर अर्थ रहितता तक के शिकार हुए हैं, उसका कारण अंग्रेजी गद्य द्वारा पाउंड और मिल्टन के बीच में खड़ी पृष्ठ संख्या 95 की गई दूरी और उसके फलस्वरूप इतिवृत्ति का वर्णन के अनिवार्य रूप से तिरोहित हो जाने या नए ढंग की प्रबंध रचना के लिए सर्वथा अनुपयोगी सिद्ध हो जाने में ही ढूंढा जा सकता है। इसीलिए शायद पाउंड ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कैंटोज के बारे में पूछे जाने पर कह दिया कि मुझे उनके बारे में कुछ भी याद नहीं, हो सकता है वर्जिल, दांते या मिल्टन की पंक्ति में कैंटोज द्वारा अपने को खड़ा ना पाने की अनुभूति से संतप्त पाउंड ने यह नैराश्यपूर्ण वाक्य कहा हो। यह हो सकता है वर्षों के कठोर परिश्रम के बाद भी किसी सर्वथा नए प्रबंध स्थापत्य की तलाश की असफलता ने उन्हें अपनी ही वर्षों से अर्जित रचना समृद्धि के बारे में यह विस्मृति का विस्मय प्रदान किया हो। गद्य द्वारा पैदा हुई प्रबंध रचना के स्थापत्य की इस दूरी और चुनौती को समझे बिना निराला की कथात्मक कविताओं को प्रबंध रचना का नाम देना उचित नहीं है। परंपरागत प्रबंधात्मकता से बिलगांव के फलस्वरूप पश्चिम के कवियों ने अपनी नए ढंग की कथात्मक कविताओं के लिए लंबी कविता शब्दावली का इजाद किया। वह कविता जिसमें कथ्य का विकास प्रवाह एक सार्थक सोची हुई परिणत हो, जिसमें किसी झीने कथात्मक आधार पर अपने विचार चिंतन को नए अर्थों प्रकाशित करने की रचनात्मक योजना कवि ने क्रियान्वित और प्रतिफलित की हो। यह पुरानी प्रबंधात्मकता से मुक्ति की पहली सीढ़ी है। दूसरी सीढ़ी में किसी भी पौराणिक, ऐतिहासिक या मिथिकल संदर्भ का पूर्णता बहिष्कार हुआ। कथ्य के इस आख्यानगत आधार के बिना ही कवि ने अपने चिंतन को ही रचनात्मक स्तर पर एक कथात्मक आधार दिया, बल्कि चिंतन को ही कथा का रचनात्मक रूप दिया। पहले ढंग के प्रयत्नों का उदाहरण यदि प्रामेथियस, अनबाउंड, कुबला खां, पैशोला की प्रतिध्वनि, राम की शक्ति पूजा, शिवाजी का पत्र, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, तुलसीदास, संशय की एक रात, कनुप्रिया, असाध्य बीड़ा आदि कविताएं हैं, तो दूसरे ढंग के प्रयत्नों के उदाहरण सरोज स्मृति, चंबल की घाटियां, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, हालुमैन, ईस्ट कोकर, वेस्टलैंड आदि कविताएं हैं। कैंटोज इस दूसरी धारा को ही अधिक सूक्ष्म और गहरे स्तर पर प्रतिष्ठित करने का एक अनवरत प्रयास है। सिर्फ अपने चिंतन को विराट नए प्रबंध स्थापत्य के धरातल पर मूर्त करने का अनथक प्रयत्न। हिंदी में बिना किसी कथात्मक आधार के फैंटेसी और अपनी निजी कल्पना ऊर्जा से इस तरह के नए प्रबंध स्थापत्य निर्मित करने का अनथक और सफल प्रयास सिर्फ मुक्तिबोध में मिलता है। मुक्तिबोध या इलियट की इन कविताओं को कथा, काव्य या कथात्मक कविताएं नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनमें आख्यान का ऐतिहासिक परंपरागत आधार बिल्कुल तिरोहित हो गया है। इन्हें प्रबंध के नए स्थापत्य के अंतर्गत रखा जा सकता है। पृष्ठ संख्या 96। इन्हें लंबी कविताएं तो कहा जा सकता है, लेकिन लंबी कथात्मक कविताएं नहीं। लेकिन निराला के साथ दूसरी तरह की गड़बड़ इन कविताओं को लेकर पेश आती है। सरोज स्मृति को छोड़कर बाकी अपनी किसी भी लंबी कविता में उन्होंने आख्यान का आधार नहीं छोड़ा है, चाहे वह पंचवटी प्रसंग जैसी प्रारंभिक कविता हो या यमुना के प्रति या राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, शिवाजी का पत्र अथवा स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, सभी में किसी न किसी रूप में दूरवर्ती या निकट अतीत का कोई न कोई पौराणिक, ऐतिहासिक या लोक आख्यान विद्यमान है। अब जहाँ आख्यान विद्यमान है, वहाँ से इतिवृत्ति या विवरण का निष्कासन कैसे संभव होगा? जबकि स्थिति यह है कि गद्य ने इस निष्कासन को एक चुनौती के रूप में फेंक दिया है। मुझे लगता है कि निराला प्रसाद की तरह इस चुनौती को लेकर सचेत भी नहीं है और अपनी इन लंबी कविताओं द्वारा प्रबंध रचना के उस नए स्थापत्य की तलाश में जूझ भी नहीं रहे हैं। लेकिन अनजाने ही समय और परिस्थितियों का जो दबाव उन पर है, वह उनके पारंपरिक इतिवृत्तात्मक क्लासिक टोने को जगह जगह से खंडित भी करता है। उनकी ये सभी लंबी कविताएं उनके रचनात्मक मन की इसी दुनिया का प्रतिफलन है। उनमें ना तो इतिवृत्ति और विवरण से निजात है, ना उसका पूरा स्वीकार। उन्हें लगता है कि कथा तत्व के बिना लंबी कविता संभव नहीं है, और फिर कथा तत्व उन्हें पारंपरिकता के पीटे पिटाए वर्णन के दायरे में किसी न किसी रूप में खींच ही ले जाता है। कुल्ली भाट और बिल्लेसुर बकरिया के लेखक निराला को काव्य के सीमाहीन क्षेत्र में पैदा की हुई गद्य की इस गड़बड़ी का एहसास शायद नहीं है, इसीलिए वह अपनी इन लंबी कविताओं द्वारा प्रबंध रचना के उस नए स्थापत्य की तलाश के लिए जूझते हुए नहीं दिखाई देते, जैसे कामायनी की रचना द्वारा प्रसाद दिखाई देते हैं। इतिवृत्त के निष्कासन की इसी चुनौती को स्वीकार न करने या न झेल पाने के कारण प्रबंध रचना के ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से दिनकर की उर्वशी या पंत का लोकायतन कामायनी से आगे की रचनाएं नहीं हैं, और प्रबंध रचना के क्षेत्र में व्यर्थता और पृष्ठपोषणता का उदाहरण है। लगता है कि दिनकर या पंत ने या तो इस ऐतिहासिक नुक्ते को समझा नहीं, जहां आख्यान की घटनात्मकता व्यर्थ पड़ गई है, या वह प्रसाद की तरह रचनात्मक चुनौती की उस भयंकर कष्ट साध्यता से लगातार जूझे नहीं और घबरा कर घुटने टेक दिए, और फलतः एक फालतू किस्म रचना के उत्तरदायी बने। इसी ऐतिहासिक नुक्ते की गहरी समझ के कारण रविंद्रनाथ से प्रबंध रचना को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने उसका बड़ा सटीक जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि सिंगल कॉमा, आधुनिक जमाने में सरस्वती जब नृत्य निमग्न पृष्ठ संख्या 97 थी, उनके घुंघरू एकाएक टूट गए। मैंने उनमें से एक एक घुंघरू अपनी कविताओं के रूप में अलग अलग चुने हैं। अपनी सारी रूपकात्मक व्यंजना में यह कथन उसी ओर संकेत करता है। आधुनिक युग में प्रबंध रचना अपने संपूर्ण आख्यानगत इतिवृत्ति के साथ निरर्थक और नीरस पड़ गई है, और उसकी स्वर झनकार स्फुट अलग अलग गीतों कविताओं के रूप में ही सुनी जा सकती है, या मुक्तिबोध, आर्थर, रैम्बो, इलियट और पाउंड द्वारा रची गई निजी चिंतन कथाओं के नए प्रबंध स्थापत्य में। जब निराला सरस्वती के टूटे हुए इन नूपुरों को अलग अलग चुनते हैं, जब वे अपने अंतः संगीत के संपूर्ण अर्थ संभार को छोटे छोटे गीतों में व्यक्त करते हैं, तब वह मौलिक तेजस्विता का प्रमाण देते हैं। जब वे क्रोध या संताप या अपरंपार दुख भार से भारत को उसके जन समाज को उद्घोषित करने का संकल्प लेते हैं, जब वे कविता और गद्य की जमीन के फर्क को खत्म करके उसे अभिजात्य और पारंपरिकता से संपूर्ण रूप से मुक्त करने की शपथ लेते हैं, जब वे टूटे हुए अपनी अंतिम तन्मयता में प्रभु के चरणों में समर्पित होते हैं, अथवा जब वे ऋतुओं के प्रत्यावर्तन में अपने स्मरण में बचे हुए जीवन के पुनः पुनः लौटने की प्रतीक्षा करते हैं, रचना प्रक्रिया के इन सभी स्तरों पर उनकी काव्य ऊर्जा दर्शनीय है। लेकिन वही निराला जब आख्यान का आधार लेकर प्रबंध रचना के क्षेत्र में किसी नए स्थापत्य की तलाश करते चलते हैं, तो कुछ अजीब सा चित्र सामने उभरता है। अगर इन कविताओं में प्रतिष्ठित दूसरे अर्थ का संधान न किया जाए, तो ये कविताएं सिर्फ पारंपरिकता का सफल निर्वाह लगेंगी, क्योंकि विवरणात्मकता तो इनमें काफी हद तक सुरक्षित है। यह दूसरा अर्थ बहुत स्पष्ट ढंग से संकेतित नहीं है, उसे गहरे उतर कर खोजना पड़ता है और उसकी संगति बिठानी पड़ती है।